छोटा सा बचा हुआ रात्रि क्लास है 10 जुलाई 1968 दूसरे पेज के मध्यालय में। तुम बच्चे जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई की रिजल्ट नई दुनिया जरूर चाहिए। इसलिए हर 5-4 वर्ष बाद लड़ाई लगती है। और बच्चों के सामने अहम ऑब्जेक्ट खड़ी है, ये लक्ष्मी नारायण। तो बच्चों को सुदर्शन चक्र चलाना है, क्योंकि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना। तो जरूर ऐसा पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं ने अपनी आत्मा के 84 के चक्र को दर्शन किया है। और बेहद का बाप भी मिला है। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए, बाप मिला है ये पक्का है, तो झट बाबा का हो जाना चाहिए। बाप का न बने और शरीर छूट जाए तो फिर वर्षा तो मिल नहीं सकेगा। इतनी नाजुक बातें सुनाते हैं क्योंकि मौत पर तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गाते भी हैं सिमिर सिमिर सुख पाओ, अर्थात बाप को स्मरण करके सुख पाओ। तो कलह कले सिमटे सब तन के, इतना सुखी हो जाना है कि निरोगी कंचन काया मिल जावे। ऐसे तो तुम बच्चों की 21 जन्मों के लिए सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। किस जन्मों के लिए जीवन मुक्ति पद पावेंगे। गायन भी है, तकलीफ की बात नहीं है। वेद के बाप को सिर्फ याद करना है और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कन्याओं को तो नौकरी करना कायदे के विरुद्ध है। बाप कन्याओं से कहते हैं तुमको अभी नौकरी नहीं करनी है। कौन कहते हैं? अगर बुद्धि में बैठा है कि हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है तो बाप क्या करता है? है? बाप बच्चों के लिए क्या करता है? है? बच्चों की परवरिश करता है। तो जब बाप मिला है तो कन्याओं को नौकरी करने की क्या दरकार है? अभी तो ये ईश्वरीय सेवा करनी है। मनुष्य को हीरे समान बनाना। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। स्वर्ग में और नरक में है तो बहुत फर्क है। क्या फर्क है? नरक है विकारी बुद्धि नरक का बनाया हुआ, मनुष्यों का बनाया हुआ, और स्वर्ग है सदैव स्वस्थिति में रहने वाले शिव का बनाया हुआ। वो शिव है ऊंचते ऊंचे, तो जरूर ऊंचते ऊंची दुनिया बनावेंगे। उसका नाम ही है शिवालय। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं, क्योंकि बनाने वाला एवर प्योर है। तो पवित्र दुनिया ही बना लेगा ना, और तुम कल्प कल्प पवित्र दुनिया की राजा रानी बनते हो। कल्प पहले में सल ही बाप तुमको पुरुषार्थ कराते, तो अभी कौड़ियों की पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं आया हूं तुमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने के लिए। तो बच्चों पर रहम पड़ता है, अभी टाइम बहुत अच्छा है। देखो प्राइम मिनिस्टर भी अभी फीमेल है, इंडिया की ऊंची कुर्सी पर बैठा है ना। उनको भी समझाना चाहिए, अभी फीमेल शिव की शक्तियां बन रही है, शिव के साथ मिलकर के स्वर्ग की स्थापना कर रही है। आप भी फीमेल हो, फीमेल्स स्वर्ग के द्वार खोल रही है, आप भी सहयोगी बने, आपको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम गाया हुआ है ना। तो पहले उस प्राइम मिनिस्टर को अच्छी रीति पकड़ना चाहिए, माताओं को ही कलश मिला, तो ऐसे राय निकाल करके लिखना चाहिए कि माताओं को ड्रामा प्लान अनुसार अमृत कलश मिलता है, ताकि माताएं भारत को फिर से स्वर्ग बना सके। आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए माताओं को कलश मिल रहा है, अभी आप हमको मदद करो तो आप भी ऊंच पद पा सकती हो। ऐसे ऐसे युक्तियां निकाल करके लिखते रहो, फिर बाद में तुम उनसे कह सकेंगे कि देखो हमने तो आपको सुनाया था, आपने सुना ही नहीं। जो माताओं की बड़ी हो वो अपनी सही करके उनको दे दे, उनको भी पता चले कि यहां तो माताएं ही माताएं हैं। ये ज्ञान हिम्मत के कलश से सबको पवित्र बनाती है, ये भी बताना चाहिए कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हमने पुरुषोत्तम बाप को पहचाना है। हमारा भी कल्याण हो रहा है तो औरों का भी कल्याण करना है। आप नहीं करेंगे तो भी कल्याण तो होना ही है, करेंगे सो पावेंगे, जो नहीं करेंगे तो आप ही पछतावेंगे। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का प्यार प्यार गुड नाइट। ओम अगला रात की क्लास है, अभी छोटा सा है, 11 जुलाई 1968। ये ज्ञान और ये याद बहुत सहज है, याद ही बाप को करना है। और ये भी बताया है कम कार्डे दिली आर्डे, हाथों से काम करते रहो, बुद्धि बाप की याद में लगी रहे। कोई ने बच्ची से पूछा, बच्ची कहती है बाबा ने कहा है काम करो और मुझे याद करो, तो मैं काम भी करती हूँ याद भी करती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है भले कारपोरेशन में काम करो। फिर बाबा कहते हैं काम करो और मुझे याद करो। तो मुख्य बात है मुझे याद करो। वो कर रही हूँ और बाबा को याद करती हूँ है तो बहुत से, इसमें भूलने की भी बात नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा है ये काम करो, वो भी करती हूँ, बाबा को याद करो, तो इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं। हाँ, दैवी गुण धारण करने हैं और कुमारियों में तो पवित्रता होती ही है, तो जहाँ पवित्रता है वहां दैवी गुण तो है ही है। बाकी रही आप समान बनाने की सेवा, कुमारी खुद पवित्र है तो औरों को भी पवित्र बनावे। जब काम करो तो बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा है ये याद भूलो मत। बाप का पैगाम देना है चक्कर चलाना पड़े, ये नालिश तो बहुत सहज है। और फिर है मनमना भक्त, तो बाबा ने कहा है कि काम आदि बंद करो, मिलिट्री में भर जाओ। मिलिट्री में भर्ती होकर भल मारो, मरना भी पड़े, याद पक्की होगी तो अंत मते सुगति हो जाएगी, भले मारो। हाँ, बाबा को याद रखो, मरना कोई पाप नहीं है। बाबा की याद हो। कोई पुलिस में काम करते हैं, चोरों को मारना पड़ता है, क्योंकि मार बिगर सच नहीं बतावेंगे। तो सच खंड की स्थापना के लिए, सच को बाहर निकालने के लिए मरना भी पड़ता है, परंतु क्या करो, बाप की याद में मार लगाओ। क्योंकि जानते हो बाप की याद करने से भी कर्म विनाश होंगे, और एक बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से पावन बन करके सतो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि और जो आत्माएं हैं वो तो कभी सतो प्रधान बनती हैं और कभी तमो प्रधान भी बन जाती, तो उनके याद करने से फायदा नहीं है। इसको याद करने से फायदा है जो सदैव सदैव सतो प्रधान है, उसके लिए कहते ही हैं सप्त चित्त आनंद, सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। कई बच्चों में दैवी गुण बड़े अच्छे हैं, ऐसी ऐसी बच्चियां जिनमें पवित्रता भी है दैवी गुण भी हैं, वो बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हैं। कोई ऐसी भी है सोचती है हम पैसे इकट्ठा करती हूँ, वो बाबा का ही है, मेरा सभी कुछ बाबा का है, ऐसे समझने से भी वहां ट्रांसफर हो जाता है। फिर अनेक जन्मों के लिए बाबा बहुत कुछ दे देते हैं, ये तो बहुत सेफ्टी निदान है, याद करना चाहिए। अलफ माने अल्लाह, जो पहले नंबर में है वो पहला अक्षर है अलफ, और वो है ऊंची ती ऊंची। फिर नंबर आता है बे माना ही बात चाहिए, और बेहद का बाप ही बेहद की बात चाहिए देते हैं। पहले भी तुमको बेहद की बादशाही थी, अभी नहीं है। फिर बाप कहते हैं अलग को याद करो, तो बादशाही तुम्हारी है। इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सहज है तो भूलना क्यों चाहिए? क्या सहज है? नहीं, बात हो रही थी अलग की, सहज है अलग को याद करना, और कठिन है बिंदी को याद करना, नुक्ता को याद करना। बेसिक में क्या करते थे? बिंदी को याद करते थे, जट बुद्धि तरफ जाती थी। और अभी तो तुमको बाप के पार्ट का पूरा पता चल गया, तो सहज हो जाना चाहिए, भूलना क्यों चाहिए? आस्ते आस्ते रूहानी बाप की सर्विस करने का शौक बढ़ता जाएगा, फिर समझेंगे कि हमारा 8 घंटा उस रूहानी सेवा में जाता है। ऐसा करने से तो हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। सेवा में ज्यादा समय आप जाएगा तो फिर हम बहुतों की सेवा करेंगे, बहुतों की सेवा करेंगे, बहुत ढेर सारी प्रजा बनेगी। तो बुद्धि में पक्का हो जाएगा, एक राजा की कितनी प्रजा होती है? ढेर की ढेर प्रजा होती है। तो प्रजा तो बनानी पड़े, आगे चल करके प्रजा बनाने का भी तुम बच्चों को बहुत शौक आ जाएगा। जब बहुत म्यूजियम खुल जाएंगे तो ऐसी ऐसी बच्चियां जिनमें कोई अवगुण नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची हैं, आखिरी तो इसी सर्विस में लग जाएंगे। गवर्नमेंट की सर्विस करते करते फिर भी इस सर्विस में लग ही जाएंगी। कौरव गवर्नमेंट की सर्विस है तो पांडव गवर्नमेंट की सर्विस अच्छी है। बच्चियां जानती हैं विजय किसकी होनी है? पांडवों की विजय होनी है। तो बाप कहते हैं भल सर्विस करो, परंतु जब शौक हो तब करे ना। जब औरों पर तरस पड़े तब ही इसे सर्विस में लग जावे। तुम अंधों की लाठी बनते हो, अंधे बिचारे बाप को जानते ही नहीं, उनका तीसरा नेत्र खुला ही नहीं है, अज्ञान के अंधे हैं। अगर जानते भी हैं तो भी गाली देते हैं, तो कहेंगे कि पूरा जाना जाने और फिर गाली देवे, इससे तो अच्छा न जानना। कम से कम भीतर फिक्र में तो न कहे। बच्चे जानते हैं ये बाप बड़ा वंडरफुल है, ऐसा वंडरफुल बात वंडरफुल युक्तियां बताते हैं। सारी सृष्टि का समाचार, रचना का समाचार पूरा सुनाते हैं, पूरी बातें बताते हैं तो बुद्धि में बैठ जाती है, हम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। और दुनिया के दूसरे मनुष्य तो अपन को सुदर्शन चक्रधारी कह नहीं सकते, वो तो समझते हैं कि सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है अथवा कृष्ण को है अथवा नारायण को है। बच्चे जानते हैं सुदर्शन चक्र तो हमको है, देवताओं को कोई सुदर्शन चक्र नहीं होता, उनको ज्ञान का चक्र घुमाने की दरकार भी नहीं है। इस चक्र को फिराने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और जो रावण व रावण संप्रदाय हैं, उनके देह अभिमान का गला कट जाता है। हम पांच विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हैं। तो तुम बच्चों को हिंसा का काम तो करना नहीं है, उन्होंने तो समझ लिया है सुदर्शन चक्र कोई गला काटने की चीज है नहीं। बाप समझाते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने से रावण के पंजे से तुम छूट जाओगे। दिखाते भी हैं, कुमारी ने भीष्म पितामह को बाण मारा, ये ज्ञान की बाण की बात है, कुमारियों में ज्ञान था ना, कौन सा ज्ञान था? उनमें पूर्व जन्मों की स्मृति का ज्ञान था। जिस कुमारी ने भीष्म पितामह को बाण मारा उसको पूर्व जन्मों का ज्ञान था ना, था तो बाण मारा। तुमको तो पूरे 84 चक्र का ज्ञान है, तो जो ज्ञान है वो औरों को भी देना है। बाकी कोई स्थूल बाण मारने की बात नहीं है, तो बहुत अहिंसक बनते हो। वो स्थूल बाण मारने से तो हिंसा होती है। तुम कोई को भी दुख देने वाले नहीं हो। बाबा समझते हैं ये बच्ची कब किसको दुख नहीं देती होगी, जब आगे बढ़ेगी तो उसको और भी ज्ञान की बातें चाहिए। जब समझेगी तो जानेगी अभी तक तो हमारा टाइम वेस्ट होता था, तो हम बाबा से क्यों नहीं 21 जन्म का वर्षा ले। अगर ये कौरव गवर्नमेंट की सर्विस करते करते प्राण निकल जाए तो क्या हाल होगा, क्योंकि शरीर पर तो भरोसा नहीं है। तो फिर शौक से ईश्वरी सेवा में लग जाना चाहिए। आगे चल करके ऐसे ऐसे इत्तफाक होते रहेंगे, परंतु जब तक तुम्हारा राज्य स्थापन न हुआ है तब तक बहुत ठंडी हो जाएगी मन। राज्य स्थापन होगा और पुरुषार्थ में बहुत ठंडक आ जाएगी। ये रिहर्सल तो जरूर होनी है। मनुष्य कितने मरते रहते हैं, तो निश्चय भी हो और बाप की सर्विस में भी लग जाए, क्योंकि सर्विस तो बहुत है। जो जो जितना सर्विस करेंगे उनको उतना ऊंच पद जरूर मिलेगा। पद पाने के लिए सर्विस के ऊपर ही सारा मदार है। तो बच्चों को ये विचार सागर मंथन करना चाहिए, और विचार सागर मंथन के लिए बच्चों को चलता है जो जो सर्विस में तत्पर ये रहते हैं। तो सर्विस करते करते ऐसी अवस्था जमानी चाहिए जो अंत में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न पड़े। और सर्विस करते करते शिव बाबा की याद में रहते रहते सर्विस के विचारों में ही अगर शरीर छोड़ेंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा बच्चों को बोलिए, और एक रात्रि क्लास है। July 1968 ईश्वरीय सेवा में मजा बहुत है, क्योंकि ईश्वर ही आते हैं और हमको पढ़ाते हैं। ईश्वर है ऊंचे ते ऊंच, दुनिया वाले समझते हैं राष्ट्रपति बहुत ऊंचे। अगर राष्ट्रपति ने कोई सेवा किसी को दी हो और वो राष्ट्रपति की दी हुई सेवा करे तो समझेंगे हमको बड़ा मजा आता, नशा ही चढ़ जाएगा। परंतु तुम तो जानते हो वो तो अल्पकाल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, और ईश्वर ईश्वर तो सदाकाल के लिए ऊंचे ऊंचे हैं। तो ऐसे ईश्वर आकर के जब हम ईश्वरीय सेवा दें तो कितने शौक से करनी चाहिए, ये बात कोई नहीं जानते। तो तुम बच्चों को तो ईश्वरीय सेवा की अचानक लाटरी मिल गई है, इसलिए इसको पहले पहले समझ नहीं सकते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। ये तो बड़ी भारी लाटरी है, दिल होती है ऐसी लाटरी अनेकों को मिले, क्योंकि इसमें खुशी रहती है। ऐसी ईश्वरीय सेवा और कोई नहीं कर सकते सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि बच्चों को ईश्वर का ज्ञान है, तो बच्चों को ईश्वरीय सेवा में खुशी रहती है, पदम का भाग्य खुल जाता है। जितना जितना सर्विस करेंगे उतना नर अथवा नारियों को अपने भाई बहनों को सुख पहुंचाते रहेंगे, इतना सुख पहुंचाने वाले तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई दुनिया में नहीं होते। तुम बहुतों को सुख देते हो तो जन्म जन्मांतर बहुत सुखी रहते हो, तो नशा चढ़ता है। जितना हम औरों का कल्याण करते हैं उतना हम अपना कल्याण करते हैं, क्या औरों का कल्याण है हमारा कल्याण। जितना हम सर्विस करेंगे भाइयों की अथवा नर नारियों की उतना हमको इजाफा मिलता जाता है, बाप भी खुश होते हैं, ये बच्चा कितना अच्छा मददगार बच्चा है, ये अपनी तकदीर कितनी ऊंची बनाते हैं। सो तो बाप के सिवाय कोई भी बता ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो समझते हो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे उतने बड़े नवाब बनेंगे, फिर भी राजा महाराजा बनना अच्छी बात है, वो अच्छी तकदीर है। नवाब तो इस दुनिया में बनते रहेंगे, नवाब तो छोटी बात है, लेकिन राजा महाराजा बनना वो बाप याद के बनाते। नंबर वार प्रजा पद पाना या अब्बल नंबर प्रजा में जाना या फोर्थ क्लास प्रजा में जाना, ये नंबर वार प्रजा बनना कोई अच्छी तकदीर नहीं है। क्यों ऐसे क्यों कहा? अरे स्वर्ग में प्रजा बन जाए ये भी कोई कम बात है क्या? अरे प्रजा तो वो भी बनते हैं जिनको संदेश मिलता है कि बाप आया हुआ है, फिर संदेश को धारण नहीं करते और कोई पुरुषार्थ भी नहीं करते, वो भी प्रजा बन जाते हैं। प्रजा को तो आड़ में चलना पड़ता है और राजा तो आड़ देने वाला होता है। बाप कहते हैं जब मुझे छोड़ते हो व मुझे फारकती देते हो तो तुम चांडाल का जन्म लेते हो, माना फोर्थ क्लास प्रजा में चले जाते हो। और क्या कहेंगे बच्चे, अनुभव भी अपना बड़ी खुशी खुशी से सुनाते हैं, तो बच्चे समझते हैं बाप भगवान स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बात सही देंगे। ये समझना तो तुम बच्चों को कामन बात है, जैसे लौकिक बाप से वर्षा लेना कामन बात है बच्चों के लिए, ऐसे अलौकिक वर्षा लेना भी तुम बच्चों के लिए कामन बात है। तुम कल्प कल्प लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो और बेहद के बाप से भी तुम बच्चे ही वर्षा लेते हो, भक्ति मार्ग में आमदनी कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ चाहते हैं, कहते हैं कि हम वैकुंठ में जावें। मीरा ने कितनी भक्ति की, कृष्ण के लोग वैकुंठ में जाने के लिए, फिर क्या वैकुंठ में गई? कुछ भी नहीं। कैसे जावे हैं वो तो समझ ही नहीं सकते हैं, तुम तो जानते हो इसलिए पुरुषार्थ करते हो। अब सर्विस करेंगे तो गहराई से और भी जानेंगे। ऐसे बहुत हैं जो चाहते हैं कि बंधन न हो, हमारे बंधन खलास हो जावे तो हम यहां ही बैठ जावे। सन्यासी तो वो बंधन तोड़ करके गुम हो जाते हैं, उनको तो वैराग आ जाता है, परंतु यहां तो सन्यास करने की बात ही नहीं है, यहां कोई घर बार छोड़ करके भागने की बात नहीं है। दुख से व कोई भी समस्या से भागना ये तो कमजोरी की निशानी है। बाप आकर कमजोर बनाते हैं या पावरफुल बनाते हैं? बाप तो है ही सर्वशक्तिमान, तो शक्तिशाली बनावेंगे ना। समस्याओं से या दुख की बातों से भागना ये तो बड़ी भारी कमजोरी हो गई। तुम बच्चे जानते हो बल कितने भी मर्तबे वाले हैं, परंतु उन मर्तबे वालों को तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये साधु सन्यासी कितने मर्तबे वाले हैं, इनका देश विदेश में कितना मान मर्तबा होता है, परंतु तुम्हारे मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। उन्हें भगवान से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, और तुम तो कितनी ऊंच प्राप्ति करते हो। तुम जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना तुमको बहुत सुख मिलेगा। जो अच्छे समझू सयाने बच्चे हैं अपने घर में भी रहकर के पुरुषार्थ करते हैं, बाप समझाते रहते हैं, क्या कि सभी बच्चे तो यहां आकर नहीं रह सकते। जैसे और आश्रम है वहां सबको जाने की छुट्टी है, तुम बच्चे तो जानते हो हम तो बेहद के बाप के पास आए हैं, पूरा पुरुषार्थ करके बेहद के बाप से वर्षा ले लें, विजयमाला का दाना बने, और विजयमाला का दाना भी नीचे नंबर में न बने, क्या कहा है, विजयमाला में भी नीचे के मड़के भी होते हैं और ऊंचे मड़के भी होते हैं, तो कौन सा मौका बने? ऊंचे नंबर का दाना बने, ऊंचे नंबर के जो दाने होंगे वो कौन से वंश के होंगे? चंद्रवंशी और चंद्रवंशी, यही तो श्रेष्ठ धर्म बाप आकर के स्थापन करते हैं। और धर्मों का मन का बनना ये तो कमजोरी की बात हो गई, नीचता की बात हो गई। हम तो ऊंचे नंबर क्यों नहीं ले गए? तो जो ऊंचे नंबर वाले हैं उनकी माला सिमरी जाती, आठ रत्न गाए जाते हैं और मंदिर में भी नौ रत्न बनाते हैं, उनको लकी समझते थे, वो लकी थे। बाकी वो भाग ही पहनने की बात नहीं है कि जाकर के बापती भाग ही पहन लेंगे तो हम गले की माला बन जावेंगे, नहीं भाग ही पहनने से लकी नहीं बनेंगे। गले में लटक जाते हैं ना, हाँ भाग ही पहनने से लकी दाना नहीं बनेंगे। विश्व के मालिक बनने वाले ही लकी ठहरे, बाकी वो भाग ही पहनने से क्या होगा, क्या फायदा। ये निशानी माला की, माला गले में डालते हैं ना, ये निशानी किनों की है, ये तो कोई जानते ही नहीं है किनों की ये निशानी है। जिन्होंने बाप की बहुत सेवा की है उन्हों की ये निशानी है। ये तो करके जन्मपत्री वालों ने सुनाया है, अभी तुम इतने लकी बनते हो जो तुमको वहां जन्मपत्री आदि दिखलाने की ही बात नहीं रहती। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, किसकी, नौ ग्रह है ना, सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, नाम ही है बृहस्पति, बृहस्त माने बड़ा, सबसे बड़ा है, वजनी बहुत है, इसलिए देवताओं का गुरु कहा जाता है। उस बृहस्पति की दशा तुम बच्चों के ऊपर बैठती है, तो वहां तुमको जन्मपत्री दिखलाने की जरूरत ही नहीं है जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। वहां ये सभी भक्ति मार्ग की बातें होती थी, तुम संग में भी बच्चे जो तुम्हारी चलन बिल्कुल न्यारी है, क्या इस तरफ इशारा दिया, ये भाखी आदि पहनना ये तो भक्ति मार्ग की निशानी है। गले में वो स्थूल माला डाल लेते हैं, न तो यहां माला डालने की बात है न गले पड़ने की बात है, क्या बात है। जो जितनी जास्ती ईश्वरीय सेवा करते हैं वो बाप के गले का हार बनते हैं। तो भन पुरुषार्थ करते रहो, बहुत बच्चे हैं जिनमें दैवी गुण कम है क्योंकि उतना योग बल नहीं आया है। अगर योग बल हो, अगर पूरा योग बल आ जाए तो ये पुरानी दुनिया बिल्कुल भूल जाएगी। तो बच्चों को बाप की ही याद आवे तो शांति धाम सुख धाम की ही याद आवे, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो तो याद आती है ना, ऊंचते ऊंचे है बाप तो जरूर ऊंचते ऊंचे से वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा है ऊंचते ऊंचे, बाप का ऊंचते ऊंचे वर्षा है शांति धाम और सुख धाम, और सभी कुछ बुलाई देना चाहिए। इस दुनिया में जो कुछ भी है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, देह को देखते हैं, देह के संबंधियों को देखते हैं, देह के ढेर सारे पदार्थों को देखते हैं, दुनिया की अच्छी अच्छी सीन सीनरियां देखते हैं, तुम जानते हो ये सब सब खलास होने वाले हैं, तो उन सबको भुला देना, क्योंकि इन सभी से हमको दुख मिला है, इनसे सुख नहीं मिलता, सभी संबंधियों आदि से दुख ही मिलता है। इसलिए कहते हैं ये सभी कुछ एक ही है, जो सुख और कोई दे ही नहीं सकता वो सुख एक ही बाप देते हैं। सच्चा स्थायी सुख एक बाप से ही मिलता है। तो बच्चे समझते हैं कि हम भी वो एक बाप से सुख ले रहे और औरों को भी वो सुख दे रहे, खुद सुख में है तो औरों को भी दे रहे। जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, जितनी सेवा करते हैं तो उनको भी कितनी खुशी होती है। वो सोशल वर्कर्स की सर्विस तो अल्पकाल के लिए है, एक जन्म में ही सुख थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी मिले मिले न मिले। बेहद का बाप कितनी अच्छी राय देते हैं, उन सोशल वर्कर्स को ये पता ही नहीं है कि ईश्वरीय सर्विस क्या होती है, जिसे 21 जन्मों के लिए सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो खुद अपनी धारणा करके सोसाइटी की सर्विस करनी है, टाइम तो बहुत पड़ा है, तुम बच्चों के पास जो भी टाइम मिले तो सारा टाइम फिर इसी में लगाया जाना चाहिए। किसमें? ईश्वरी सेवन 12 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। कम से कम 8 घंटा तो तुमको मिलता ही है क्या? 8 घंटा अपनी देह की परवरिश, 8 घंटा बाल बच्चों की परवरिश, तो माताओं का धंधा और पुरुषों का धंधा गवर्नमेंट की सर्विस, अपना धंधा दोरी। तो 8 घंटा देह की सर्विस, 8 घंटा धंधा दोरी की सर्विस, फिर भी 8 घंटा बचा। तो 8 घंटा तो तुमको मिलता ही है ना, जैसे गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करने के लिए बांधे हुए है, ये सेवा भी ऐसी है। वो है देह की सेवा, जिस्मानी सेवा, और ये है आत्मा की रूहानी सेवा। तो जितना हो सके 8 के बदले 9-10 घंटे भी मिले तो सारी हयाती इस सर्विस में लगाए देना चाहिए। क्योंकि जो सर्विस करते हैं गवर्नमेंट की, उनको भी तो स्पेयर टाइम ढेर सारा मिल जाता है ना, तो क्या करना चाहिए? इसी सेवा में लगाए देना चाहिए। इसको पुरुषार्थ की लगन कहा जाता है। जिसको लगन होगी उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझ पर भी बात है, प्रजा कोई कम नहीं बनती है, बहुत प्रजा बनती है। तुम हो अननोन वॉरियर्स, तुम क्या कर रहे हो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, समझ ही नहीं सकते हैं। और तुम तो अपने राजा ही स्थापन कर रहे हो। तुम समझते हो कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, तो औरों को भी आप समान बना लो। ब्राह्मणियां कोशिश करती हैं कि ये भी विश्व का मालिक बने। फिर जितना जो ये पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि अहम ऑब्जेक्ट तो है ही है, तो फिर जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करें। दिखाया भी है, फॉलो फादर फॉलो मदर। अब ये फॉलो फादर मदर कौन है जिनको फॉलो करना है? फॉलो फादर फॉलो मदर मुरली तो 68 की है। तो 68 में ब्रह्मा के मुख से बोला, पूछा भी, ये फॉलो फादर फॉलो मदर कौन है? शिवबाप मदर फादर है, उसको फॉलो करे तो परमधाम में जाके 5000 साल बैठे।
ब्रह्मा बाबा,
ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके सूक्ष्म मद्रवासी बन जाए, उसको मान बोले
सरस्वती।
अरे फॉलो करेंगे तो पीछे पीछे चलेंगे ना, जहाँ वो जाएगा वहाँ हम भी जाएंगे। तो ये फॉलो फादर और मदर कौन थे?
प्रजापिता।
युवा
प्रजापिता।
एक बात नहीं बताते, बाप दो हैं, एक है शिव बाप, वो तो परम धाम में जाके बैठेगा। कितने साल? 5000 साल। उसको तो कोई फॉलो करना नहीं चाहेगा। क्यों है? कि परम धाम में ही जाके बैठ जाए, फिर तो कोई पार्टी नहीं रहेगा। आत्मा क्या चाहती है? सदा के लिए परम धाम में बैठना चाहती है या आत्मा सुख भोगना चाहती है? आत्मा तो चाहती है कि हमारा शरीर भी बना रहे और शरीर से हम दुख न भोगे, सुख ही भोगे। तो परम धाम में बैठने से तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्न किया कि जिन मदर और फादर को फॉलो करना है, वो मदर और फादर कौन हैं? कहेंगे जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो हमारे हैं मूल मदर फादर। पूछा, शिव बाबा पुरुषार्थी है? आदि देवी और कोई है क्या? उस समय तो मम्मा थी, उसने शरीर छोड़ दिया था। तो बच्चों से पूछा, आदि देवी कोई और है क्या? मम्मा की तरफ चित्र में इशारा किया, ये नहीं है। गायन तो है, तुमेव माता चक्षुषा त्वमेव। ये तो गायन है कि तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। अब हम जानते हैं वो तो है परम पिता। कौन? तो उसका पिता कोई होता नहीं। परम माने जो परे थे, परे हो, प्रजापिता से भी परे। प्रजापिता किसको कहा जाता है? प्रजापिता
700 करोड़
प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वो तो उनका टाइटल है। जब यज्ञ के आदि में प्रजापिता चला गया तो ब्रह्मा को टाइटल मिल गया। तो बाबा ने याद दिलाया मुरली में कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखना रंग है, तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, ये रंग है, क्या कहना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ब्रह्मा को वास्तव में प्रजापिता नहीं कह सकते। ब्रह्मा का अर्थ ही क्या है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने बड़ी ते बड़ी माँ, जिसने बड़े ते बड़ा सहन शक्ति का गुण धारण किया। और कोई ने दुनिया में ऐसा सहन शक्ति का गुण धारण करके नहीं दिखाया, तो वो तो हुआ ब्रह्म। फिर जो प्रजापिता है वो कौन है? ये है प्रजापिता है। मम्मा भी है, शिव बाबा इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। इन द्वारा
नहीं,
शिव बाबा इन द्वारा, इन माने दो हैं, कौन कौन? ब्रह्मा और प्रजापिता, इन द्वारा तुमको एडप्ट करते हैं, हैं ये है दोनों, इनको कहा जाता है माता पिता, वो है परम पिता, कौन? शिव बाप, फिर एडप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरी बदली काम संभालो, मैं तुम्हें काम संभालने के लिए ज्ञान देता हूं, मेरी बदली, शिव बाप कहते हैं मेरी बदली तुम मेरा काम संभालो, कौन कौन? प्रजापिता, ब्रह्म, औरों का भी कल्याण करना, अगर तुम कल्याण नहीं करेंगे तो फिर ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा सभी से जास्ती म्यूजियम पसंद करते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं? म्यूजियम क्यों? प्रदर्शनी पसंद नहीं करते है? प्रदर्शनी क्यों नहीं और म्यूजियम क्यों? प्रदर्शनी एक जगह स्थाई नहीं रहती और म्यूजियम एक जगह स्थाई हो जाता है, तो बाबा म्यूजियम पसंद करते हैं, प्रदर्शनी पसंद नहीं करते, तो उसके लिए हाल देखना है, तो चलो हमारे साथ, हम दिखला भी म्यूजियम बड़े बड़े बनेंगे तो बहुत लोग आएंगे, स्थाई एक दो को ले आते हैं दिखलाने के लिए, बड़े आदमी को बुलाते हैं ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, सिर्फ नाम हो जाए, इसलिए बाबा कहते हैं उनको समझाना है, किनको? जो बड़े आदमी आते हैं ओपनिंग करने के लिए, उनसे सिर्फ ओपनिंग नहीं कराए लेना है, लेकिन उनको समझाना है कि हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं श्रीमत से, बोलो आप क्या चाहते हो, विश्व में शांति चाहते हो या नहीं चाहते हो? विश्व में शांति चाहते हो या और कुछ चाहते हो? भला शांति भी किस प्रकार की? शांति की परिभाषा क्या? शांति कब हुई थी विश्व में? विश्व शांति करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, कहते हैं ना, तो कपड़े का झंडा विश्व की शांति करेगा क्या? बस समझाना शुरू कर दो, ये कपड़े के जो तीन रंग हैं वो किसकी यादगार है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीन पार्ट की यादगार है। कब हुए थे? शक्ति के आदि में शिव ने आकर के ये तीन मूर्तियां स्थापन की। शिव आते हैं तो अकेले नहीं आते, इन तीन मूर्तियों के साथ ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, लाखों वर्ष कहने से भूल जाते हैं, इसलिए बताओ कि 5000 वर्ष हुए हैं, 5000 वर्ष पहले भी ये तीन मूर्तियां आई थी शिव की, इसलिए शिव को त्रिमूर्ति कहते हैं, सुख शांति पवित्रता तीनों की स्थापना की थी, क्या सुख की भी स्थापना हुई थी, शांति की भी स्थापना हुई थी उस नई दुनिया में जो भगवान बाप ने आकर स्थापन की त्रिमूर्ति शिव ने, उसमें पवित्रता भी थी। बाप गरीब निवाज है, क्या गरीबों को ही उठाते हैं, साहूकारों को वो तो अपने ही मगरूरी में रहते हैं। अभी भारतवासी दुनिया के मुकाबले क्या है, गरीब है कि साहूकार है? ज्यादातर भारतवासी क्या है? ज्यादातर भारतवासियों की जेंट्री गरीब है। जो साहूकार हैं वो तो बहुत थोड़े हैं, बिरला टाटा डालमिया वगैरह उंगलियों भी गिन लो, और गरीब बाकी सारी भारत की पलटन गरीब ही तो है। उसमें भी गरीब हैं ये माताएं जिनको शास्त्रों में नाम दिया है, अहिल्याएं कुबजाएं गणिकाएं, इन साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है ये ज्ञान लेने की। गरीबों को धन की जरूरत रहती है। तो पूछो तुम किसके पिछाड़ी हैरान होते हो है? सारी दुनिया किसके पिछाड़ी हैरान है? पैसे के पीछे पड़ी हुई है। इन पैसों से नई दुनिया स्थापन हो जाएगी क्या? अगर पैसों से नई दुनिया स्थापन हुई होती तो भगवान को आके गीता ज्ञान सुनाने की क्या दरकार? ये तो ज्ञान रतन है, इनको असली धन कहा जाता है। अभी देखो बाप ने तुमको कितना खजाना दिया, कितना अतिचार धन देते हैं। बाप पूछते हैं मीठी मीठी बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, निश्चय है कि हम अमर लोक में जाकर के जन्म लेंगे। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को अपने बच्चों के ऊपर खुशी होती है, जानते हैं कि हम जाकर के ये बनेंगे, बच्चों को भी खुशी रहनी चाहिए। बेगल टू प्रिंस, सेवा ही सेवा, बाप का पैगाम तब पहुंचेगा। ये पुरानी तमो प्रधान आर्फनों की दुनिया है, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बाप आते हैं कि आर्फन्स कोई रह न सके, उस दुनिया को कहा जाता है सुखधाम। ये दुनिया तो दुखधाम है, यहां कोई का कुछ भी मर्तबा होता नहीं है। वहां नई दुनिया में तो अकाली मौत भी नहीं होती है, वहां तो सदैव ही सुखी सुख, यहां तो न चाहते भी अनेक प्रकार के दुख आ जाते हैं, अचानक मौत आ जाती है। इसको कहा जाता है खून ही ना खेल। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होती है बाप के आगे आने में, शिव बाबा ही याद आवे, चक्र भी याद आवे, उठते बैठते चलते फिरते तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। क्या मेहनत की कोई बात नहीं है, बाबा के पास रहने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। क्या कहा? क्या जो बाबा के पास ही पड़े हुए हैं, घर में मधुबन में ही पड़े हुए हैं, उनसे भी जास्ती तुम ऊंच पद पा सकते हो। जाने जानदार कहते हैं परंतु ऐसे नहीं सभी को बैठ जानते। बाप कहते हैं मैं जानता सभी हूं परंतु बताऊंगा अपने समय पर। क्या हैं? कौन सा बाप कहते हैं? शिव बाप जो आत्माओं का बाप है वो कहते हैं मैं जानता सभी हूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा। तुमको बाप के आगे आने में बड़ी खुशी होती है, कैसे हम बाबा के सामने ही बैठे रहे, परंतु कितने ऐसे बैठे रहेंगे। बाप कहते हैं घर में रहते भी तुम ऐसी सर्विस करते रहो तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो, लौकिक बाप के आगे तो बहुत ही रहे। पारलौकिक बाप जो 5000 वर्ष के बाद मिला है तो क्यों नहीं गिन रहे होगी रहने की? लौकिक बाप की भी तुमने परवरिश ली, सभी संबंधी गोतियों की परवरिश ली, तो अभी बेहद का बाप मिला है तो क्यों ना परवरिश ले। बाप भी बहुत बच्चों को देख करके खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक एक बच्चे को, ठीक से सर्विस नहीं करते हो तो उनके ऊपर प्यार नहीं जाता है। हर एक अपने दिल से पूछे हम बाबा की कितनी सेवा करते हैं। अच्छा
मीठे मीठे सीधे बच्चों को रूहानी बाप दादा तैयार कर